पेश हैं आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स ने रैपिड एंटीजन टेस्ट के नतीजे रिपोर्ट करने के लिए जारी की नई ऐप। भारत में कोरोना के चलते युवाओं में हो रहा है मोह भंग। और जोकोविक वीजा मामले में अब टेनिस खिलाड़ी के प्रदर्शन पर उठ रहे हैं सवाल। और अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स ने रैपिड एंटीजन टेस्ट के नतीजों को दर्ज करने के लिए न्यू साउथ वेल्स सर्विस ऐप पर एक नई व्यवस्था जारी की है। वे लोग जिनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट की जांच पॉजिटिव आती है, उन्हें इस ऐप के जरिए अपने नतीजों की जानकारी देना अनिवार्य है। यह ऐप आज सुबह 9 बजे से सुचारू हुई है। राज्य के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे का कहना है कि 1 जनवरी 2022 से वे सभी लोग जो रैपिड एंटीजन जाँच में पॉजिटिव आए हैं, उन्हें अपने नतीजे इस ऐप पर दर्ज करने चाहिए। उनका कहना है कि ये ऐप इस्तेमाल करने में बेहद आसान है।
It will only take a couple of minutes. Simple questions in terms of registering your details. If you are registering a positive test for yourself or for someone else, those details need to be provided. And importantly, also the provision of information in relation to whether you have any underlying health conditions.
उन लोगों पर जो अपने नतीजों को इस ऐप के जरिए दर्ज नहीं करते, $1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। श्री पेरोटे का कहना है कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर से इस विषय पर चर्चा कर ली है और यह कि पुलिस इस जुर्माने को आगामी 19 जनवरी से लागू कर देगी। उधर विक्टोरिया 1000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्तियां कर रहा है ताकि राज्य के टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से चलाया जा सके। विक्टोरिया में अब 1 मिलियन विक्टोरियाई कोविड रोधी टीके की अपनी तीसरी खुराक पा सकते हैं। ये संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। डिप्टी प्रीमियर जेम्स मर्लिनो का कहना है कि ये नई भर्तियां आगामी मांग को पूरा करने में मदद करेंगी।
We're calling on first year health students, retired nurses, and more to join an expanded workforce of COVID-19 vaccinators to be trained and deployed across our state-run vaccination clinics. We'll be targeting up to 1,000 Victorians to come on board, people with appropriate knowledge, skills and experience, and that could be you. And applications open next week.
ये नई भर्तियां लिमिटेड स्कोप वैक्सीनेटर्स अर्थात सीमित क्षेत्र टीकाकर्मी श्रेणी में आएंगे। इस श्रेणी के कर्मी केवल वयस्कों को ही टीका दे सकते हैं। इन पर सूचित सहमति लेने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही ये प्रतिकूल परिस्थितियों को संभालेंगे या उनमें हस्तक्षेप करेंगे। श्री मर्लिनो का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बड़े दबाव में है क्योंकि 6,600 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी काम के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उधर न्यू साउथ वेल्स ने इस महामारी के दौर में अब तक की सबसे गंभीर तालिका दर्ज की है। पिछले रिपोर्टिंग काल में राज्य में 21 मृत्यु दर्ज की गई हैं। राज्य में अब 2,242 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 175 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। राज्य में आज सुबह तक कुल 34,759 नए कोरोना संक्रमण सामने आए हैं। इसी बीच विक्टोरिया में भी 21 कोरोना संबंधी मृत्यु दर्ज की गई हैं। राज्य में 946 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और 40,127 नए कोरोना संक्रमण सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया गणतंत्र मोर्चा यानी ऑस्ट्रेलियन रिपब्लिक मूवमेंट ने ब्रितानी साम्राज्य की जगह दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को नियुक्त करने के अपने चुने हुए तरीके की घोषणा की है। समूह का कहना है कि फेडरल और प्रादेशिक संसदों को नामित उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर उनको राष्ट्रीय चुनावों के लिए सामने रखना चाहिए। इस चुनाव के विजेता 5 साल के लिए पदासीन होंगे। इस राष्ट्राध्यक्ष पर लोकसभा की बहुमत के साथ प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की जिम्मेदारी होगी। अगर ये बहुमत पेश नहीं होती तो राष्ट्राध्यक्ष दोबारा चुनाव की घोषणा करेंगे। हालांकि इस राष्ट्राध्यक्ष के पास सरकारी कामों में हस्तक्षेप करने और कानून लागू होने की प्रक्रिया में दखल देने के कोई अधिकार नहीं होंगे। आने वाले ल्यूनर नए वर्ष में देश में आने वाले यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे बेध्यानी में देश में कोई जैविक खतरे की वस्तु ना ले आएं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कृषि मंत्री डेविड लिटिल प्राउड का कहना है कि इस मौके पर आने वाले यात्री कई बार ऐसे तोहफे लेकर आते हैं जो कृषि और पर्यावरण के लिए बड़े खतरे के हो सकते हैं। उनका कहना है कि ल्यूनर नया वर्ष देश विदेश में कई लोगों के लिए एक खास मौका है, पर यह भी सच है कि साल के इस समय कई जैविक खतरे की वस्तुएं सीमा सुरक्षा द्वारा पकड़ी जाती हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जनवरी के पहले हफ्ते में यूरोप में कोविड 19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के 7 मिलियन से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। संगठन का कहना है कि संक्रमण दर 2 हफ्तों में ही दोगुनी से अधिक हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूरोप के निदेशक डॉक्टर हैंस क्लर्क का कहना है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पश्चिमी यूरोप में आधी से ज्यादा जनसंख्या अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना संक्रमित हो सकती है। डॉक्टर क्लर्क का कहना है कि परिस्थिति चिंताजनक है।
For countries not yet hit by the Omicron surge, there is a closing window of opportunity to act now and plan for contingencies. Omicron moves faster and wider than any SARS-CoV-2 variant that we have previously seen.
उनका कहना है कि अगर देशों ने परिस्थिति के लिए तैयारी नहीं की तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा भी सकती है। उन्होंने सभी देशों से आग्रह किया है कि वे अंदर की परिस्थितियों में मास्क पहनने अनिवार्य करें और टीकाकरण को, जिसमें बूस्टर खुराक भी शामिल है, प्राथमिकता दें। कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप के फैलाव के साथ ही दोनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर फिर एक बार अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। विश्व बैंक ने अपने वैश्विक आर्थिक रुझानों को कम कर दिया है। बैंक का कहना है कि ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते फैलाव के बीच ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आर्थिक व्यवस्था कोरोना के प्रभाव में बाधित ही रहेगी। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपस्का का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना, महंगाई, नीति अनिश्चितता और सरकारी खर्चों और आर्थिक नीतियों में बार बार होते बदलावों के चलते अस्त व्यस्तता छाई है। और अब खबरें भारत से। कोरोना महामारी से प्रभावित पिछले 2 वर्षों में डिजिटल प्रक्रिया पर बढ़ती निर्भरता ने वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा को लेकर जोखिम बढ़ाया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से मंगलवार को जारी करे गए एक सर्वे के अनुसार इस दौर में युवाओं का मोहभंग, डिजिटल असमानता और अंतर्राज्यीय संबंधों में खटास जैसी बातें भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख जोखिम के तौर पर सामने आई हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन संबंधित जोखिम इस समय प्रभाव के लिहाज से सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है, जहां शीर्ष 10 में से 5 वैश्विक जोखिम जलवायु और पर्यावरण संबंधित ही हैं। विशेषज्ञों के ग्लोबल सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि 6 में से केवल एक ही व्यक्ति आशावादी है और 10 में से केवल एक का मानना है कि वैश्विक सुधार जारी रहेगा। रिपोर्ट में चेताया गया है कि महामारी के कारण भारत में सामाजिक असमानता का जोखिम भी बढ़ता रहेगा। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में बुधवार को इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,94,720 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। मंगलवार की तुलना में आज मामलों में 15.8% की तेजी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में 442 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में भारत के 120 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट यानी साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से ऊपर चला गया है। आंकड़ों के मुताबिक 24 दिसंबर को सिर्फ 2 जिलों में ही साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से ऊपर थी, जबकि 6 जनवरी को 41 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से पार हो गई थी। हालांकि मौजूदा समय में कुल 120 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 10% के ऊपर पहुंच गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का कहना है कि टेस्टिंग सार्स कोविड 2 के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी की तरह है, क्योंकि ये संक्रमित मामलों का शीघ्र पता लगाने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उनके आइसोलेशन में मदद करती है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.24 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 72 सेंट थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। जहां एक तरफ टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक अपने वीजा के विषय पर प्रवास मंत्री एलेक्स हॉक के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, वहीं ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर उन्हें आगामी ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खेलने की अनुमति मिलती है तो इस पूरे कांड का उनके प्रदर्शन पर क्या असर होगा। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि टेनिस दिग्गज ने ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रवेश करने के 15 दिन पहले बॉर्डर एंट्री फॉर्म पर भ्रामक जानकारी दी थी या नहीं। श्री हॉक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वे अपने निजी अधिकारों का प्रयोग कर श्री जोकोविक का वीजा फिर रद्द करें या नहीं। क्या इस अनिश्चितता से उपजे तनाव से श्री जोकोविक का खेल प्रभावित होगा? स्पोर्ट्स मनोचिकित्सक ब्रैडली बुश का कहना है कि हो सकता है यह उनके प्रदर्शन को बेहतर भी बना दे।
It's difficult to know in advance. What we've seen historically is it goes quite strongly one of two ways. We've seen some athletes who are able to compartmentalize really well. They, in times of personal turmoil, have been able to increase their performance on the court or on the pitch. And it actually has been used as a motivating factor, has made them double down, work harder, focus more. And so that's been really positive for some athletes. For other athletes, we've seen what happens away from their sporting life creep into their sporting performance.
और अंत में कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर एक नजर। पर्थ में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में भी कल धूप छाओं का मौसम रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल उमस के बाद तूफान की आशंका है। अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल बारिश का अनुमान लगाया गया है। अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल बरसात के साथ तेज तूफान की आशंका है। अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छाव का मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 18 जबकि न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।